नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवचायाडं नमो लूरि तप्रसाहुरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदात्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सुधानाम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम दीन भुवन में सार राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः उद्योग समारी के हम लोग छठाला की तीसरी थाल पर चर्चा कर रहे हैं और हमने आत्मा की तीन अवस्थाओं के बारे में अभी तक पढ़ा बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। इसके बाद लास्ट क्लास में हमने कंक्लूजन देखा था इसका इस सबका कि इन सबका कंक्लूजन छठवे छंद की आखिरी की दो लाइनों पर पंडित जी साहब ने दिया बहिरात्मता ही ये जानी तजी अंतरात्म होजे परमात्म को ध्याये निरंतर जो नित आनंद पूजे। क्या करना है हमको बहिरात्म पने को ही जानना है मतलब ये छोड़ने योग्य है ऐसा इसको जाना तो जान लिया ये छोड़ने योग्य तो क्या करें किसको छोड़े हमें जैसे कि हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ने योग्य जाना तो अब हम उनको नहीं करते पहले करते होंगे लेकिन फिर हमको पता पड़ा कि ये तो गलत है तो भी पहले हमने उनको बुरा जाना कि नहीं करना चाहिए एंड देन वी स्टॉप्ड डूइंग इट। ऐसे ही बहिरात्मपने को पर द्रव्यों में आत्मा की कल्पना को हम ये वाली बुद्धि को ही जानकर इसको छोड़ें फिर क्या करें अंतरात्म गूजे अंतरात्मपने को ग्रहण करें हम उसको प्रकट करें कि बहिरात्मपना छोड़ेंगे तो अंतरात्मपना आएगा और क्या करें परमात्मपने को निरंतर ध्याएं कि हाँ मैंने अंतरात्मपने को तक तो किया है बट दिस इज नॉट माय एंड अल्टीमेट गोल दिस इज जस्ट द प्रोसेस उस एंड गोल तक पहुंचने के लिए मुझे भावना तो परमात्मा पने की ही भानी है तो परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे जिसको निरंतर आनंद चाहिए वो जीव बहिरात्म पने को छोड़ने योग्य जानकर ये जानकर उसे छोड़े अंतरात्म पने को प्रकट करे और परमात्मा पद का निरंतर ध्यान करे जिसके द्वारा निरंतर आनंद प्राप्त किया जाता है। ठीक है हेलो
हाँ जी
किसी को यहाँ पर कोई क्वेश्चन ओके परमात्मा पने को ध्याना इसका अर्थ क्या है परमात्मा पने को ध्याना इसमें आप लोग ये मत समझना कि अरहन सिद्ध नाम अरहन सिद्धों का नाम इनके नामों का स्मरण इसमें प्रवचन सार की अस्सी भी गाथा जो आती है जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से वह जानता निज आत्म को वो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय सिद्ध भगवान का पर्यायगत स्वभाव इन सबसे अपने स्वभाव का मेल करे तो यहाँ पर परमात्म को ध्याय निरंतर मतलब ज्ञानी जीव के अंतरात्मपना तो होता है लेकिन वह अपने को परमात्मा देखता है वो अपने आप को अंतरात्मा देखेगा तो वो बहिरात्मा हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं आई?
हाँ
हाँ जी
आप अपने आप को अंतरात्मा देखोगे तो आप अंतरात्मा हो कि बहिरात्मा हो कि परमात्मा हो अभी मैं बहिरात्मा होती कि मैं अपने आप को शरीर देखता हूँ नाउ सडनली मुझे सम्यक तो हुआ एंड नाउ अब मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि देखता हूँ सो व्हाट आई एम अंतरात्मा आई एम अ बहिरात्मा और आई एम अ परमात्मा
अंतरात्मा
अपने को परमात्मा,
अंतरात्मा हूँ
अपने को परमात्मा देखता है।
नहीं लेकिन मैं परमात्मा भी हूँ नहीं ना, मैं तो सब में दृष्टि हूँ अभी। हाँ तो मैं अपने आप को यदि सम्यक दृष्टि मानता हूँ तो मैं अंतरात्मा हूँ परमात्मा हूँ कि बहिरात्मा हूँ?
अंतरात्मा।
ओके देखो यहाँ पर जानकारी अलग होती है, ज्ञान अलग होता है, मतलब हमको जो नॉलेज होती है, और बिलीफ श्रद्धान अलग होता है। सम्यक दृष्टि कभी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानते क्योंकि सम्यक दर्शन एक पर्याय है, पर्याय अपूर्ण है। उनका अहम उनके त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान पर स्थिर है, वो अपने को भगवान आत्मा मानते हैं। सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अंतरात्मा अपने को अंतरात्मा मानेगा तो वो बहिरात्मा हो जाएगा क्योंकि वह पर्याय में अहम कर रहा है। आपको अंतरात्मा होना है तो भी पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि आप परमात्मा को निरंतर ध्यान करो, आप अपने आप को निरंतर परमात्मा स्वरूप देखोगे तो आप अंतरात्मा रह पाओगे और आप ग्रेजुअली परमात्मा बन पाओगे। यदि आप अपने आप को अंतरात्मा स्वरूप देखोगे तो आप ना अंतरात्मा बन पाओगे ना परमात्मा बन पाओगे। इसलिए गुरुदेव श्री ने वेरी क्लियरली कोटेशन दिया पूर्णता के लक्ष्य से। यदि आपका लक्ष्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, यू आर नेवर गोइंग टू हैव सम्यक दर्शन। आप कभी उत्पन्न नहीं कर पाओगे सम्यक दर्शन को, आपका लक्ष्य पूर्णता का नहीं है। आत्मा पूर्ण है, आत्मा में कुछ कमी नहीं है, आत्मा कहीं से भी इनकम्प्लीट नहीं है। इस इनकम्प्लीट आत्मा नहीं है, ऐसे कम्प्लीट पूर्ण आत्मा को पूरा ग्रहण नहीं करके हम सिर्फ उसका आंशिक ग्रहण करें, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर फिर आत्मा का आंशिक ग्रहण भी संभव नहीं है। तो सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि जानते तो होंगे कि मुझे आत्मानुभूति हुई है इसलिए मेरा शायद ये वाला गुणस्थान चल रहा हो, ऐसा अनुमान से जानते तो होंगे, लेकिन कभी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, अपने आप को भगवान आत्मा देखते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानता, हम कहाँ मानते हैं अपने आप को मिथ्या दृष्टि? हमें तो लगता है हम जो मानते हैं वो सच है, राइट? तो हमें तो कोई ठिकाना नहीं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी मानते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि भी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानता, वो अपने आप को आत्मा मानता है। जैसे मिथ्या दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि नहीं मानता, शरीर मानता है, बिल्कुल वो किसी द्रव्य में उसने अपनी एकता करी है ना बुद्धि की, ऐसे सम्यक दृष्टि भी किसी पर्याय में एकता नहीं करेगा, वो द्रव्य में अपना अहमपना स्थापित करेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर बोला है परमात्म को ध्याय निरंतर, मतलब वह निरंतर स्वरूप का स्मरण प्रतीति विचार करता है, इस कारण वो अंतरात्मा हुआ है। वो अंतरात्मा हुआ है इसलिए वो स्वरूप का विचार नहीं करता, उल्टी नहीं चलेगी गाड़ी, ठीक है? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अंतरात्मपना द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है?
पर्याय।
ओके, बहिरात्मपना द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है?
पर्याय है।
परमात्मपना द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? थोड़ी गड़बड़ हो गई, राइट? हम जिस परमात्मपने में अरहंत और बुद्ध भगवान को देखते हैं वो पर्याय है, लेकिन आचार्य हमें जो परमात्मापने को दिखाना चाहते हैं वो द्रव्य है, और जो परमात्मापने की पर्याय भी है ना, वो पर्याय उस द्रव्य के प्रतिच्छंद के स्थान पर है। वो पर्याय बिल्कुल द्रव्य की ही फोटोकॉपी है, जेरोक्स है, द्रव्य ही है, राइट? तो उस पर्याय की भी जब चर्चा चले, जब अरहंत भगवान की या सिद्ध भगवान की चर्चा चले, तो कुंकुलाचार्य देव ने स्पष्ट बोला है, तुम अरहंत भगवान को देखते हो तो तुम्हें दिखती पर्याय भले हो, लेकिन तुम्हें अपना द्रव्य स्वभाव दिखना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल डिक्टो ट्रू कॉपी। तो जो भगवान मंदिर जी में विराजमान है वो भगवान अरहंत, उनकी बॉडी तो अरहंत है नहीं, क्योंकि अरहंत तो आत्मा की पर्याय है, बॉडी तो पुद्गल की पर्याय है, तो अरहंत का शरीर तो अरहंत हो नहीं सकता, तो अरहंत का आत्मा अरहंत है। तो पहले तो मंदिर में जाके भगवान के शरीर को नहीं, उनकी आत्मा का विचार करें कि वो अरहंत भगवान की आत्मा है। अरहंत भगवान का शरीर हम नहीं देखने आते मंदिर, हम अरहंत भगवान के स्वरूप का विचार करने मंदिर आते हैं। जो हमें दिखता है वो तो पुद्गल की पर्याय है, उसका तो अरहंत भगवान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तो अरहंत भगवान का क्या स्वरूप है? यह ऐसा स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये उनका स्वरूप है। ये जैसा इनका स्वरूप है ना, बिल्कुल ऐसा मेरा स्वरूप है, वो नहीं जो बाद में प्रकट होगा, अभी प्रकट ऐसा मेरा स्वरूप है, नित्य उद्योतमय वो स्वरूप है। ऐसा बहुत निर्णय से, विचार से, तर्क से, अनुमान से, आगम से अनंत देव के सामने विचार करना, ये परमात्मा को ध्याने के सही मायने है, ये उसका अर्थ है। ठीक है, तो परमात्मा को ध्याना मतलब अंदर आत्मा परमात्मा की भक्ति करता रहता होगा मंदिर में बैठ के रोज, ये नहीं, वो निरंतर स्वरूप में जाने को, डुबकी लगाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। His all efforts are only for one thing, कि मैं वापस आत्मा में कब डूब जाऊं, मैं आत्मा से निकल कर ये बाहर यहाँ पर जलने क्यों आ जाता हूँ। तो इसलिए वो निरंतर आत्मा के बारे में या तो सोच रहा है जब वो आत्मा के बाहर है, और जब डूबा हुआ है तब वो आत्मा को भोग रहा है, ये उस अंतरात्मा का परमात्मा को ध्याना है। ठीक है, कैसा
हाँ।
ध्याना है? निरंतर, एक ज्ञायक की अखंड उसको धारा चलती है, आत्मा ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञान, ज्ञान मैं जाननहार हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं करनार नहीं हूँ, मैं नहीं करता, मेरा यहाँ पर कुछ और कर्तृत्व है ही नहीं, मेरा सुंदरतम काम जानने का है, मेरे पास और कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके मतलब हुए, क्या? बहिरात्मपने, बाहर की अपूर्ण अवस्था का ख्याल। इस अवस्था के ख्याल के बाद पता पड़ा कि अवस्था में रहने जैसा नहीं, तो कैसी अवस्था में रहने जैसा? कि सच्ची तो परमात्मा की अवस्था मुझे भाई है, आदर्श तो मेरे सिद्ध भगवान है, अशरीरी सिद्ध भगवान, तो फिर वो तो भी नहीं होगा, तो क्या करूं? कि मैं कुछ नहीं, उनके स्वरूप जैसा अपने स्वरूप को देखता रहूं, तो अपने आप ये बहिरात्मपना छूट जाएगा, अंतरात्मपना प्रकट होगा। लेकिन चूंकि मेरी दृष्टि परमात्मपने पर है, तो मुझे अंतरात्मपने पर भी संतुष्टि नहीं होगी, मैं रुकूंगा नहीं कि चलो भी आधी रेस तो जीत गए हम, सम्यक दर्शन हो गया, नहीं, मुझे तो मैं कब मुनिराज बनूंगा, कब श्रेणी चढ़ूंगा, कब घातिया नाश करूंगा, कब अघातिया भी नाश करूंगा, ऐसा निरंतर वो सेल्फ मोटिवेशन उसको आगे आगे का, वो अपनी उपलब्धियों को नहीं देखता, वो अपने स्वभाव की पूर्णता को देखता है, तो उसको वर्तमान की हालत लुभा नहीं पाती कि चलो अब तो मेरा इतना काम हो गया, बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता। वो निरंतर अपने परमात्मा स्वरूप को देखकर परिणति का मिलान करता है, और जब मैच नहीं करती तो तुरंत पुरुषार्थ उसको और अच्छा बनाने के लिए वो वापस जूझ जाता है, उसमें लग जाता है। ठीक है, समझ में आया?
हाँ जी।
ओके, तो इसमें दोनों बातें लेना, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये समझे कि सम्यक दृष्टि, अपने आप को सम्यक दृष्टि जानते तो है, मानते नहीं है, मानते तो वो अपने आप को आत्मा है, क्योंकि कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी पर्याय में अहमपना स्थापित नहीं करता, उसका सारा बल, सारा जोर द्रव्य स्वभाव पर टिका हुआ है। ठीक है, पक्का? इसलिए हमको भी बारंबार आत्मा की ही बार बार हमको चाहिए। ठीक है, हमको बार बार आत्मा की स्मृति चाहिए। कोई इसमें क्वेश्चन किसी को?
नहीं,
नहीं?
ओके यहाँ पर अभी जबलपुर में शिविर कल ही कम्प्लीट हुआ है, शिविर चल रहा था बच्चों का, ग्रुप शिविर था, मतलब रेसिडेंशियल शिविर था, एक प्रॉपर स्कूल है यहाँ पर ग्रीन वैली स्कूल जबलपुर में, तो उसमें आसपास के बच्चों को इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पर एक शिविर चल रहा था ग्रीन वैली स्कूल में, उसमें 400 बच्चे आए थे, 400 बच्चे थे, 20 विद्वान लोग थे, अलग अलग 20 क्लासेस चलती थी रोज, मतलब प्रॉपर सेक्शन बने हुए थे, हर एक सेक्शन में 20 बच्चे होते थे सिर्फ, तो पूरी प्रॉपर, तो आगम बोध, भाग वन, भाग टू, भाग थ्री के किस सेक्शन होते थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो प्रॉपर वो शिविर था, फिर उसमें ग्रुप क्लासेस, फिर भक्ति सामूहिक पूजन अभिषेक, बहुत अच्छा शिविर था। तो उसमें जो बच्चों की कॉमन क्लास थी उसमें एक टॉपिक चला था, ठीक है, तो उसमें 3 सूत्रों पर हम लोगों ने बच्चों को सिखाया, तो बहुत सुंदर वो 3 सूत्र प्राकृत के मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। ये प्राकृत के 3 सूत्र ही हमको बार बार स्मरण करने चाहिए, जो परमात्मा को ध्याय निरंतर, इससे मुझे थोड़ा क्लिक कर रहा है वो, ठीक है। तो हम लोग ने फर्स्ट थिंग जो बच्चों को बताई, सबसे फर्स्ट थिंग, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे बट दे लाइक इट सो मच, मतलब सब बच्चों के मुंह में एवरीबॉडी इज लाइक सो, मतलब बहुत अच्छा आप बच्चों को लगा, ये हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि बच्चों को ऐसी बातें भी पसंद आ सकती है, राइट। तो सबसे पहला है जम किंचवि उपन्नम तस्व विनाशो हवे नियमेण। तो फर्स्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बच्चों को ऐसे बताया कि बेटा हम जब आंखें खोलते हैं तो हमें दुकान, हमें जो कुछ भी दिखता है बाहर दुनिया में, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये हमको उसको देखने की आर्ट सीखनी है। तो उसकी आर्ट क्या है, जम किंचवि उपन्नम तस्व विनाशो हवे नियमेण। वह जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है। तो मतलब हम आसपास आप जो कुछ भी देख रहे हो, आपके रूम में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इधर इट हैज बीन मेड बाय समवन और कंस्ट्रक्टेड बाय समवन और किसी मशीन में किसी फैक्ट्री में बना हुआ है, या आपके किचन में कुछ बना हुआ होगा तो आपने खुद बनाया है, बट वॉट एवर यू सी राइट नाउ, आप जो कुछ भी देखते हो वो क्या है, वो बना हुआ है, वो उत्पन्न हुआ है, यस बराबर है, राइट हाँ। आप लोग जो कुछ भी देखो अपने आसपास, वो सब उत्पन्न हुआ है। तो स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय उपेक्षा में अनित्य भावना की जो पहली गाथा लिखी उसमें ये वाली लाइन डाली, जम किंच भी उत्पन्नम तस् विनाशो हवे नियमेण। वह जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है, राइट। तो फिर हम जो बाहर देखते हैं इसमें जो कुछ भी हम देखते हैं एक ना एक दिन चला जाएगा, नियम से जाएगा। लाइक यदि हम टाइमलाइन को उठे, हम नेक्स्ट 60 इयर्स देखें, तो आज के हिसाब से हम देखें तो नेक्स्ट 60 इयर्स में जितने हम लोग शायद क्लास में ज्वाइन हुए, नेक्स्ट 80 इयर्स में हम में से कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबकी बर्थ डेट है। So if we have a birth date, we'll have expiry date. If we have a manufacturing date, we'll have expiry date. So jam kinchivi uppannam, jab bhi koi cheez uppann hoti hai, it would die. Uska nash hoga, hoga aur hoga. To phir bahar trust karne jaisa kaun hai? Bahar aisi kaun si cheez hum jiski sharan le sakte hain? Hum jis par bharosa kar sakte hain? Jo hamare saath hamesha rahega? कौन हुआ, जो कुछ भी दिखता है वो तो हमें सामने दिख रहा है कि ये तो इसने बनाया था, ये तो ये वाली कंपनी का बना हुआ है, तो बना हुआ है ना, ये वाला क्लोथ मैंने यहाँ से लिया, इट्स अ डिजाइनर, दिस डिजाइनर मेड इट, और आई गॉट इट फ्रॉम हियर, आई गॉट इट स्टिच्ड फ्रॉम हियर, और आई बॉट इट फ्रॉम हियर, तो इट वॉज मेड बाय समवन और इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय सम मशीन, बट इट वॉज मेड, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस सम टाइम अगो, तो ये उत्पन्न हुआ है, मतलब तो बच्चों को बस ये सिखाया गया कि बेटा आप जो कुछ भी देखते थे वो उत्पन्न हुए, तो हमें क्या क्लिक करना चाहिए, इसका नाश होगा, मतलब आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस, मेरी हैप्पीनेस इस पे डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि इस पे डिपेंड करेगी तो कल को मेरी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कल खत्म होगा, राइट। तो क्वेश्चन आया फिर हमें किसकी शरण लेना, मतलब बाहर जब मैं आंखें खोलता हूँ तो कोई शरण दिखता नहीं मुझे, क्योंकि सबके सब प्रगट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सबके सब मरने वाले हैं, सबके सब, वेदर लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेड राइट. तो फिर हम क्या करें, हम किसका भरोसा करें. तो नेक्स्ट सूत्र आदा ही में शरणम, ये कुनकुंद आचार्य देव की गाथा है. आदा ही में शरणम, मे यानी मेरे लिए, आदा आदा यानी कि आत्मा, ही शरणम शरण है मेरे लिए, मेरी आत्मा ही शरण है. क्यों? क्योंकि बाहर में जो कुछ भी उत्पन्न होता है या अंतर में मेरे बहिरात्मपना अंतरात्मपना, ये पर्याय है ना, ये जो कुछ भी उत्पन्न होती है ये तो नाश को प्राप्त हो जाती है. मैं किसका भरोसा करूं, मैं किस पर्याय को अच्छा मानूं, किस पर्याय को बुरा मानूं, मैं सम्यक दर्शन की पर्याय के भरोसे बैठूं? नहीं, वो तो उत्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है तो उसका नाश होगा होगा और होगा. इसलिए आदा ही में शरणम, मेरे लिए सिर्फ मेरी आत्मा शरण है. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि आत्मा को कैसे प्राप्त किया जाता. हाँ जी,
आपने अपने पहले वाली बोली के वो अनित्य गाथा की पहली कार्तिकेय नायक स्वामी की है, दूसरा ये बोला कि कुन कुन आचार्य की गाथा वो कौन से ग्रंथ की और कौन सी गाथा नंबर के, वो अगर
हाँ, गाथा नंबर तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा. कुंदकुंद शतक में स्टार्टिंग में ये गाथा आती है, जो ये वाली गाथा आपको याद होगी. अरे हंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश्वरी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण. तो इसमें जो लास्ट की लाइन है ना, आत्मा ही है शरण, इसका प्राकृत ट्रांसलेशन इस आदा ही में शरणम. ये वाली गाथा मैं आपको नंबर बता देता हूँ, दो सेकंड में देख के बता देता हूँ.
वैसे वो आप बोलते हैं तो एकदम, क्योंकि हमें प्राकृत नहीं आती ना, तो पकड़ में नहीं आता. तो
आधा क्या बोला बताइए, आधा.
मैं वापस बोलता हूँ, पहले वाला सूत्र बोलता हूँ. जन
थोड़ा तो बोलेंगे तो कर सके.
हाँ हाँ, वापिस आप लोग लिख भी सकते हैं, जिनको नोट करना हो मैं वापस बोलता हूँ. जम
जम
जम किंचवी किंचवी उपन्नम
उपन्नम
उपन्नम जम किंचवी उपन्नम
उत्पन्नम.
अब बच्चों की क्लास में तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग बोलते थे कौन ज्यादा तेज बोलेगा, तो बच्चे सब इतना तेज चिल्लाते थे उनको अपने आप याद हो जाता था, वो रिपीट करते थे. जम किंचवी उपन्नम जम किंचवी उपन्नम. मानस आप एक बार बोलोगे, इसको रिपीट करोगे. जम किंचवी उपन्नम
जम किंचवी उत्पन्नम.
वेरी गुड, उपन्नम. समीर रिजवल आप लोग हो?
यस.
समीर रिजवल आर यू देयर?
यस.
या प्लीज रिपीट इट. जम किंचवी उपन्नम
जम किंचवी उपन्नम
तस्य विनाशो ते तस्य विनाशो तस्य विनाशो हवेई नियमेण हवेई नियमेण तस्य विनाशो हवेई नियमेण तस्य विनाशो हवेई नियमेण. सिंपल. जम किंचवि उपन्नम तस्य विनाशो हवेई नियमेण. हवेई नियमेण, नियम से, नियमेण. तो सिंपल, जम किंचवी जो कुछ भी, जो कुछ भी यानी जम किंचवी जो कुछ भी उपन्नम उत्पन्न होता है, प्रकट होता है. जम किंचवी जो कुछ भी उपन्नम उत्पन्न होता है, तस उसका उसका विनाशो विनाश हवेई होता है नियमेण, नियम से. वह जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है नियम से.
गुड गुड,
थैंक यू.
ओके जम किंचवि उत्पन्नम तस्स विनाशो हवेई नियमेण। आप लोग एक एक बार पढ़िए, जिन्होंने नोट किया तो सबको एक एक बार 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 सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। लाइन पे मानस आप स्टार्ट करो एक एक बार। आप बोलिए। हाँ
जम किंचवि उत्पन्नम।
एक और बार, एक और बार।
जम किंचवि उत्पन्नम तस्स विनाशो हवेई नियणेमम।
नियम जैसे नमोकार मंत्र में भी से नॉट सिमिलरली नियम विल बिकम नियमेण नियमेण आई थिंक या नियमेण। एक्सीलेंट। हाँ ठीक है, और कौन पढ़ेगा?
नहीं बोलू, नहीं बोलू।
हाँ जी बोलिए बोलिए।
यम किंचवि उत्पन्नम तस्स विनाशो हवि नियमेण।
बहुत बढ़िया। पर जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश विनाश नियम से होता है। ये है हमारी बाहर के जगत को देखने की दृष्टि। जब हम आंख खोलते हैं तो हमको जो भी दिखेगा पहली चीज याद आनी चाहिए कि इट विल नॉट स्टे, तो हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। राइट मम्मी पापा अपने बच्चों को देखें, बच्चे अपने मम्मी पापा को देखें, पति अपनी पत्नियों को देखें, पत्नी अपने पतियों को देखें, स्टूडेंट स्कूल को देखें, टीचर्स को देखें, जो बहुत सुंदर लोग हैं वो अपनी बॉडी को देख लें, जिनके पास बहुत धन संपत्ति है वो अपने घर बंगले कार को देख लें। वॉट एवर यू सी एंड यू टेक प्राइड इन और यू लव, उसके पहले आप एक बार हमारी बात बोलो कि जम किंच भी उपन्नम। वो मतलब हमें लगता है कि हमारी ये चीज है सबसे अच्छी और हमेशा रहेगी, हम भूल जाते हैं। फिर हमको अनित्य भावना तभी याद आती है जब कोई बीमार हो जाता है या किसी को हमें पता पड़ा कि पास जावे तो कितना आसार है संसार। बट आसार तब नहीं है जब कोई मर रहा है, जब हम लोग जी रहे हैं तब भी ये संसार आसार है। राइट तो ये हमको अभी इसकी दृष्टि बनानी पड़ेगी। तो आउटर वर्ल्ड को देखने के लिए सिर्फ एक सूत्र है, आउटर वर्ल्ड की देयर इज नो सेकंड रियलिटी। आप जो कुछ भी देखते हो वो स्कंध पर्यायों को देखते हो, वो पर्याय है मतलब वो चेंज होंगी। लेट इट बी योर बॉडी, आपकी बॉडी हो, सामने वाले की बॉडी हो, आपका घर हो, किसी और का घर हो, आपकी बुद्धि हो, आपका क्षयोपशम हो, एवरीथिंग इज पर्याय। तो यदि मुझे कुछ कम आता है या मुझे कुछ ज्यादा आता है, देयर इज नथिंग टू टेक प्राइड इन, क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है क्षयोपशम, इट विल गो। मेरा ये क्षयोपशम भी नहीं है, ये भी पर है, मेरा तो सहज ज्ञान है, मेरा जो ज्ञान जानन 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 चल रहा है ये मैं हूं जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो बाहर में और अंदर में जितना कुछ भी उत्पन्न होता है नथिंग इज टू बी ट्रस्टेड और बी टेकन प्राइड ऑफ, लाइक यू डू नॉट हैव टू टेक प्राइड इन एनीथिंग। ठीक है, तो पहली चीज जम किंचवि उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेई नियमेण। वह जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से नाश होता है। ये पहली रिमाइंडर है, दैट ये रिमाइंडर हमें हमेशा आना चाहिए। मतलब दैट वो एक क्रॉस साइन नहीं होता डेंजर वाला, तो दिस शुड बी अवर डेंजर साइन विच इज पेस्टेड ऑन एवरीथिंग दैट वी सी। राइट, तो क्वेश्चन हुआ कि जब बाहर को ऐसा फिर कोई बचे ही नहीं जिस पर हम भरोसा कर पाएंगे, तो फिर मैं किसकी शरण लूं? तो कुनकुन आचार्य देव कहते हैं आदा ही में शरणम। कौन है हमारी शरण? आदा, आत्मा को प्राकृत में बोलते हैं आदा। आदा फॉर मी, आदा ही, छोटा हा, छोटी ई हा में, ही, आदा ही, में यानी के मेरे लिए, में शरणम मतलब शरण है, शरणम आदा ही में शरणम, मेरे लिए आत्मा ही शरण है।
जैसे भानु बहन नहीं चला तो,
क्योंकि
आधा के बाद कौन सा संबोध?
हा हा ही, छोटा सा ही,
आधा ही,
आधा ही, हा ही, छोटा ही, बस आधा ही
में शरणम,
में आधा ही में शरणम, शरणम
ही में शरणम।
शरण नहीं होगा, शरण होगा हिंदी में, प्राकृत में शरण, स सड़क वाला, नॉट शा शक्कर वाला, सरणम, जैसे कि चतारी सरणम पवज्जामी, तो सरणम, हाँ, आदा ही मे सरणम, आदा आत्मा ही, आत्मा ही मे, मेरे लिए सरणम शरण है, मेरे लिए मेरी आत्मा ही शरण है, क्योंकि वो कभी उत्पन्न नहीं होती तो उसका कभी नाश नहीं होता, तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है, उसकी शेल्टर हम आराम से ले सकते हैं, राइट। आधा ही में शरणम, तो फिर बच्चों ने खुद ही क्वेश्चन हुआ कि आत्मा की शरण कैसे ली जाती है, आत्मा की शरण कैसे ली जाती है, हमें तो बाहर की शरण लेते आती है, लेकिन हमें आत्मा की शरण नहीं पता कैसे ली जाती है, तो हम उसको कैसे लें। तो फिर वापस हम कार्तिकेय स्वामी के पास गए और उन्होंने कार्तिकेय अनुपेक्षा में वापस एक गाथा बोली, उन्होंने सिंपल एक इतना सा सूत्र दिया, वारम वारम सरी अपानम, ये अपनी छैडाला का जो आज अपन ने पढ़ा, ये वाली चीज क्या, परमात्म को ध्याए निरंतर तो नित आनंद हुजे, एग्जैक्टली सेम लाइन है, वारम वारम से वारम वारम,
वारम वारम,
वारम वारम मैंने बार बार, बार बार, सरे 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 वारम वारम सरे 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 वारम वारम सरे अपानम अपाणम वारम वारम सरे अपाणम वारम वारम सरे अपाणम वारम वारम सरे अपाणम बार 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 स्मरण करो, सरे मतलब स्मरण करो, ध्याओ, बार बार भावना भाव स्मरण करो, किसको,
अपाणम
आत्मा को, आत्मा को आधा भी बोलते हैं और अप्पा भी बोलते हैं, अप्पा सो परमप्पा नियमसार की गाथा है, अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है यही परमात्मा है, राइट। तो ऐसे अप्पाणम आत्मा को वारम वारम बार बार सेवो, इसकी सेवा करो, मतलब स्मरण करो, ध्याओ, ये आपको बार बार याद आए, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ये नहीं हूँ, बालक नहीं हूँ, नारकी नहीं हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, राग नहीं हूँ, मोह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ,
ये बार बार स्मरण करना, ये आत्मा की प्राप्ति का उपाय, आत्मा की शरण, आत्मा को बार बार, यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने क्या बोला, निरंतर परमात्म को ध्याए निरंतर, निरंतर यानी कि बार बार बिना रुके, बार बार आत्मा का स्मरण हो हमको, बार बार हमें परमात्मा स्वभाव का स्मरण हो, परमात्मा का स्मरण हो, ये आत्मा की शरण लेने का एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। बार बार अपने स्वरूप का विचार करूं, मैं बार बार अपनी याद करूं, बार बार, राइट। तो तीन चीजें, सबसे पहले हमको बाहर की दुनिया दिखी तो उससे दृष्टि कैसे हटेगी, कि हमको पता पड़ा इसका स्वरूप, जम किंच भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेहि नियमेन, भाई जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नियम से विनाश होता है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो फिर सडनली पता पड़ा कि मतलब यहाँ तो कुछ काम की हमारी चीज है ही नहीं दुनिया में, तो फिर हम क्या करें, तो हमें आधा ही में शरणम, मेरे लिए तो मेरा आत्मा जो कभी उत्पन्न नहीं होता इसलिए कभी नष्ट को प्राप्त भी नहीं होगा, ऐसा मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये ही मेरे लिए शरण है। तो फिर कैसे इसकी शरण ली जाती है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वारम वारम सरे अपाणम, हमें बस हम काम कर रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं और हमको ये याद आ जाए कि मैं ड्राइव नहीं करता, मैं इस काम को जानने वाला हूँ और मैं उसको ज्ञायक रह के देख पाऊं तो अपने आप कार चलेगी, एक्सीडेंट भी नहीं होगा और आप उसके कर्ता भी नहीं बनोगे। लेकिन ये भेद ज्ञान का अभ्यास है, एकदम से नहीं होता, बार बार स्वरूप की स्मृति चाहिए, वारम वारम सरई अपानम, बार बार आत्मा का स्मरण हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर परमात्म को ध्याय निरंतर से दोनों बातें हमको लेनी है। परमात्मा जो अरहंत सिद्ध है वे तो पर्याय में प्रकट है, उनका जो मैं बाहर में रूप दिखता है वो तो पुद्गल का है, वो तो आत्मा है ही नहीं, उसमें आत्मा का अंश भी नहीं है। तो अरहंत भगवान की प्रतिमा को हम विनय के लिए पूछते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत मोटा है और इसको अवलंबन चाहिए। तो हमें भी कोई इनविजिबल भगवान बता देगा और बोलेगा भगवान की मूर्ति नहीं होती है तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमें कंसंट्रेट करने के लिए कुछ चाहिए, तो हमने मूर्ति का अवलंबन लिया। लेकिन तब हमको विचार क्या करना है कि मूर्ति तो जड़ है, ये तो पुद्गल है, ये तो देखो धातु की पाषाण की बनी हुई है, भगवान तो आत्मा है, आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण कहाँ होते हैं, तो भगवान का तो ज्ञान शरीर है। अरे ज्ञान शरीर तो मेरा भी है, मेरे पास भी ज्ञान है, तो जैसे ये मूर्ति अरहंत भगवान नहीं ऐसे शरीर मैं नहीं, जैसे वो अनंत चतुष्टय वाले भगवान है ऐसे ज्ञानादि चतुष्टय वाला मैं हूँ, ऐसी बार बार भावना भाना ये आत्मा की शरण लेना है। इससे ही राग ढीला पड़ जाता है, मोह के छक्के छूट जाते हैं, मोह अपने आप ऐसे उधर पर ऊपर नीचे उठा पटक हो जाती, मोह को समझ नहीं आता कुछ, और दर्शन मोह का फिर उपशम हो जाता है। हमारी पांच लब्धियों में हम कब चढ़ जाते हैं हमको ही पता नहीं पड़ता और आत्मानुभूति हो जाती है। बट अभ्यास से वारम वारम बार बार, नहीं हो तो थकना नहीं, करते रहना, बार बार अभ्यास करना, बार बार। ठीक है, इसलिए हमको परमात्मा को निरंतर ध्याना है, अपने को परमात्मा देखना है। बाहर में उपासना पूजन भक्ति महिमा, यदि हमें किसी की सही में प्रॉपर्टी देखनी है, हमें सही में किसी की रिचनेस देखनी है, तो हम अरहंत भगवान की देखें, उनसे बड़ा पुण्यशाली कोई नहीं है, या और कोई, हम सबके पुण्य तो छोटे हैं, बहुत अल्प है, हमारे पुण्य के उदय है ही नहीं। अरहंत भगवान, यदि हमें बाहर में भी किसी की महिमा वैभव से है तो अरहंत भगवान की हो, हमें किसी की आत्मा से भी महिमा हो कि इतना इनका इतना उच्च व्यक्तित्व है, ये देखो इनके परिणाम कितने अच्छे होते हैं, ये ब्रह्मचारी है, ये वो है, तो इसमें भी हमें अरहंत की महिमा आए, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है, ना बाहर के वैभव में, ना अंतर की स्वच्छता में, वृत्ति में, विशुद्धि में, शुद्धि में, वो पूरी तरीके से हमारे आदर्श है। तो हमें महिमा हो, आराध्य हमारे कोई हो, तो भक्ति के लिए भी, आराधना के लिए भी, पूजन वंदना और श्रद्धान के लिए, सब चीज के लिए अरहंत और सिद्ध यही ध्यान योग्य है, यही देखने योग्य है, इन्हीं की स्वरूप देखने योग्य है, इन्हीं की बातें सुनने योग्य है, इन्हीं की भावना भाने योग्य है, और कुछ नहीं है। बराबर, तो ये पंडित जी साहब ने यहाँ पर बताया, बहिरात्मपना तो छोड़ना है और अंतरात्मा को ग्रहण करना है, लेकिन अंतरात्मा को ग्रहण करते समय गलती नहीं करनी है कि मैं अंतरात्मा हूँ, मैं हूँ परमात्मा और मुझे उसी की भावना निरंतर भानी है। कब? जब मैं अंतरात्मा हूँ तभी भावना भानी है, परमात्मा बन के भावना नहीं भानी, वो तो फिर बन गए, कृतकृत्य हो गए, अभी भानी है। ठीक है, तो ये तीन सूत्र बच्चों को, मतलब सारे बच्चे एकदम पूरे 400 के 400 बच्चे याद करके जाते हैं।
तो जी कितने दिन की शिविर थी?
हाँ जी,
कितने दिन की शिविर?
8 दिन, संडे टू संडे 8 दिन की थी, 7 से 14 तक, रेसिडेंशियल, बच्चे पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, बच्चे पूरे वहीं रहते हैं, वहीं पर हॉस्टल में, हॉस्टल है प्रॉपर, पूरा कैंपस है स्कूल का, तो देयर इज अ हॉस्टल, फिर पूरे क्लासरूम्स हैं, तो प्रॉपर क्लासरूम्स में क्लासेस, मॉर्निंग में योगा मेडिटेशन, देन अभिषेक पूजन, एवरीथिंग वेरी सिस्टमेटिक, मतलब बहुत अच्छे से हुआ बच्चों का शिविर।
वो जबलपुर में जहाँ मंदिर है वहाँ पे हुई थी?
जहाँ पर राजेंद्र पंडित जी लोग रहते हैं वहीं पर ही, श्रैनिक बिहार, राजेंद्र पंडित जी लोग, ये लोग सब रहते हैं। तो ये 8th year है, 8वां साल है बच्चों का, ये 8वां शिविर लगा है इस बार। तो लास्ट 8 year से ऐसे ही चल रहा है, वो कैंपस है अपने, जो वहाँ पर एक अध्यक्ष है मंदिर के, जबलपुर मंडल के, संजय भैया जी, उनका स्कूल है वो, तो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब. तो पूरा स्कूल फॉर फ्री 8 दिनों तक रहता है वहां पर, कुछ नहीं, पूरा समाज ही अपने, उनका टोटल एक्सपेंस होता होगा 8 लाख रुपए का, बट लाइक 5 मिनट में सारा मतलब अनाउंसमेंट होती है शिविर की, और 5 मिनट में सब कुछ होकर पूरी अरेंजमेंट हो जाती है, और बाकी वहाँ के जो मंडल के भैया लोग हैं वही सब मैनेज करते हैं. यंग भैया लोग हैं बहुत, तो अभी मैरिड भी नहीं है, वो लोग पूरा देखते हैं, मतलब पूरा इस महीने तो पूरा वही रहते हैं तैयारियों के लिए, एक एक चीज मतलब बहुत अच्छे से होती है. तो जबलपुर से नहीं, आसपास से, उज्जैन से, इंदौर से, हर जगह से बच्चे जितने आप आते हैं वो आते हैं आजू बाजू से.
यहाँ से कोई नहीं आया होगा?
हाँ
मैं जो मजाक कर रही हूँ, यहाँ से कोई नहीं आ पाएगा.
वही वही यहाँ से, तो वहाँ पर तो आप लोग लगवाइए वहाँ पर शिविर ऐसे बच्चों के. बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 5 से 12 साल के बच्चों का होता है, नहीं सॉरी 6 से लेके 15 तक, तो 2 ग्रुप बनते हैं छोटे बच्चों का, 6 to 11 एंड देन 12 to 15, ऐसे ग्रुप बन के बच्चों की तो क्लासेस होती है अलग अलग.
वेरी गुड,
ठीक है. अब हम लोग आगे चलते हैं. इतनी बात यहाँ पर आत्मा की अवस्थाओं की हो गई, अब यहाँ से वो बताएंगे कि भैया जगत का क्या स्वरूप है, अंतरात्मा जो बनता है अंदर में श्रद्धान क्या करता है. तो तीसरी ढाल सम्यक दर्शन की ढाल कही जाती है, यह सम्यक दर्शन का स्वरूप है. तो अब उस स्वरूप में जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन चल रहा है उसमें आगे बढ़ रहे हैं तत्वों के स्वरूप के लिए. तो हम वो वाला एक बार आज पढ़ेंगे और फिर इस पर डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. क्षण नंबर 7 है, ठीक है. चेतनता बिन तो अजीव है, पंच भेदता के है, उद्गल पंच वरण रस गंध दो, सरस वसु जाके है, चीप उद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनरूपी, तिष्ठत हो ये अधर्म सहाय, चिन्ह बिन मूर्ति निरूपी. ये 6 डाला का 7वां संन्यास से व्यवहार मोक्ष मार्ग अपना चालू हुआ था पहले. निश्चय मोक्ष मार्ग तो उन्होंने शुरू में ही खत्म कर दिया कि आत्मा को जानो, आत्मा में रहो, उसका ज्ञान करो, यही निश्चय मोक्ष मार्ग है. अब व्यवहार मोक्ष मार्ग में 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले अजीव की, चेतनता बिन तो अजीव है. जो चेतनता के बिना है, चैतन्यता के बिना है, वह कौन है? अजीव है, जीव नहीं है. और उस अजीव के 5 भेद हैं. जीव तत्व हो गया, वो पहले उन्होंने बोला कि जिसके पास ज्ञान दर्शन है, चेतना है, सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव तत्व. अब जीव तत्व के अलावा, मतलब जिसमें चैतन्यता नहीं है, जो कुछ जानता दिखता नहीं है, वो अजीव है. उस अजीव के 5 भेद है. कौन कौन से? उद्गल, पहला वाला भेद उद्गल, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ठीक है. इसमें से अब एक एक का नाम ले रहे हैं और एक एक की पूरी डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले अजीव की क्या डेफिनेशन हुई? जिसमें चैतन्यता नहीं है वो अजीव है, ठीक है. दूसरा, अजीव के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं. कौन कौन से? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल. अब उसमें से पुद्गल का, पुद्गल पंचवरण रस गंध दो परस वसु जाके है. पुद्गल द्रव्य के ये 20 गुण यहाँ पर बता रहे हैं, 20. अजीव के 5 भेद है ना, ऐसे पुद्गल द्रव्य के भेद नहीं है, पुद्गल के 20 गुण है स्पेशल. हम लोग 4 गुण जानते हैं, कौन कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण. जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं. यहाँ पर उसी को डिटेल कर रहे हैं. पुद्गल के 4 को यदि हम और इलेबोरेट करें तो 20 भेद बनते हैं. कौन कौन से? 5 वर्ण. जो कलर होते हैं वो 5 होते हैं. मेन कलर जो होते हैं, प्राइम कलर्स, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं. ये 5 प्राइम कलर्स से आप दुनिया के सारे कलर्स को बना सकते हो. तो पहला वर्ण में कितने वर्ण के कितने भेद हुई, कितनी पर्याय हुई, पांच पर्याय हुई, तो वर्ण के पांच भेद, ठीक है। दूसरा रस, रस यानी कि टेस्ट, तो टेस्ट भी इतनी सारी टाइप का है लेकिन वो पांच टेस्ट से सारे टेस्ट बन जाते हैं, तो रस भी पांच टाइप का है, ठीक है। ये वाले पांच का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपकी दुनिया की सारी डिशेस के टेस्ट बन जाएंगे। फिर पांच चीज होती है रस में, पांच चीज होती है कलर में, ठीक है। तो कलर के यानी कि वर्ण के पांच भेद और रस के पांच भेद, पांच और पांच दस, फाइव प्लस फाइव टेन, ये दस गुण हो गए। आगे गंध दो प्रकार की, ठीक है, खुशबू जो होती है वो दो प्रकार की, एक सुगंध एक दुर्गंध, अच्छी स्मेल बुरी स्मेल, ठीक है। कि गंध दो प्रकार की है, सुगंध दुर्गंध, तो गंध में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हम उसको बता नहीं सकते कि ये वाली या तो आपको वो अच्छी लगती है, वो शुभ गंध मानी जाती है, जो बुरी लगती है हम उसको दुर्गंध कहते हैं। एंड इजंट इट अ वंडर, हम सबको जो दुर्गंध होती है वो सबको बुरी लगती है और सुगंध होती है वो सबको अच्छी लगती है, राइट लेकिन ये मनुष्यों में, बट ये वेरी कैटेगोरिकली है, राइट तो यदि आप तिरेंचो में जाओगे तो जो पिग होता है, राइट जो 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 कीड़े नाली में रहते हैं, तो अभी हमारे लिए नाली और गंदी जगहों की खुशबू, सॉरी बदबू होती है, हमें अच्छी नहीं लगती। बट वो विशिष्ट जाति में जाकर जो वाले कीड़े गटर वगैरह में होते हैं, इन सारी गंदगी में उत्पन्न होते हैं, उनको फिर वो वाली चीजें अच्छी लगती हैं, अच्छी वाली अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए फिर सुगंध दुर्गंध के मायने अलग हो जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो ये हम मतलब एक विशिष्टता की अपेक्षा बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि जो कुछ सुगंध अच्छी मानी जाती है, कुछ गंध बुरी मानी जाती है, क्योंकि वो हमको प्राय सभी को अच्छी और बुरी लगती है। तो इसके दो भेद हुए, सुगंध एंड दुर्गंध। तो कितने हो गए, फाइव वर्ण फाइव रस टू गंध, ये 12 हो गए। और इसके बाद बचा स्पर्श, स्पर्श के 8 वसु, फरस यानी कि स्पर्श, फरस स्पर्श, वसु मतलब 8, वसु द्रव्य तवारी तुमडिंगधारी, वसु यानी कि 8, ठीक है। द्रव्य कितने होते हैं पूजन के, वसु द्रव्य 8 द्रव्य होते हैं, ठीक है, वसु यानी 8, स्पर्श के 8 गुण होते हैं, ठीक है, टच 8 प्रकार का होता है, ठीक है। ये पुद्गल द्रव्य के 20 गुण है, तो हम इसकी थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। देखो सबसे पहले पुद्गल द्रव्य की जब पंचास्तिकाए में वर्णन आया तो आचार्य कुंभकर्ण देव ने बोला कि पुद्गल द्रव्य एक ऐसा अनूठा द्रव्य है जिसमें आप यदि परमाणु को लोगे तो परमाणु की कोई निश्चित पर्याय नहीं होती, परमाणु खुरदरा भी हो सकता है कि नरम होगा कि क्या होगा। तो क्वेश्चन किया गया कि ऐसा होता होगा कि कुछ परमाणु किसी में अकेली स्पर्श की पर्याय चलती होंगी, कोई अकेली दिखती हो, जैसे हवा हमको नहीं दिखती, राइट, हवा को हम टच कर सकते हैं, करेक्ट, सोना हमको दिखता है लेकिन सोने का कुछ टेस्ट नहीं आता हमको, हम उसको खा लेंगे भी गोल्ड को तो इट विल नॉट टेस्ट एनीथिंग एज सच, राइट। तो किसी किसी द्रव्य में स्पर्श दिखता है, किसी किसी का कलर दिखता है तो टेस्ट नहीं दिखता, किसी का कलर दिखता है तो उसमें स्मेल नहीं आती, राइट। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण किसी किसी द्रव्य में होते होंगे, राइट, मतलब सारे पुद्गलों में किसी में स्पर्श हो गया किसी में ये हो गया। तो उन्होंने बोला कि पुद्गल द्रव्य की विशिष्ट द्रव्य है, ठीक है। तो आप आज जिसको सॉलिड फॉर्म में देख रहे हो उसी परमाणु में इतनी ताकत है कि कल वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और वही परमाणु परसों गैस बन सकता है। एक ही परमाणु है बट उसको हम बोल सकते हैं बहु रूपिया, इट कैन डिस्गाइज इनटू मेनी थिंग्स। पुद्गल द्रव्य में विक्रिया होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी फॉर्म में। तो आज जो लोहा बना है ओवर द टाइम प्रोसेस करके कल वो सोना बन जाएगा। Are you getting it? आज जो मिट्टी है एकदम नरम सी मिट्टी, वो कल को स्टोन बन जाएगी। जो वॉल्केनो उसका लावा होता है वो स्टोन बन जाता है, होता वो फायर है, पहले लिक्विड होता है, राइट, वो जम के स्टोन्स बन जाते हैं, रॉक्स बन जाती हैं, राइट। सो पुद्गल द्रव्य में ये विशिष्टता है कि ऐसा कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं है जिसका भरोसा हो कि इसकी एक ही पर्याय रहेगी, वो बदलते रहते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्य शुद्ध होता है उसका कोई भी फॉर्म रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू एनी फॉर्म. तो जो नरम चीज होती है वो कड़क हो जाती है, जो चिकनी होती है वो खुरदुरी हो जाती है, जो हल्की होती है वो भारी हो जाती है. एनीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है. हेलो.
हाँ.
हेलो.
हाँ जी.
नेवर एवर वंडर कि हमारी बॉडी बहुत सुंदर हो और अचानक से उसमें कुछ गंदगी आ जाए. कोई बहुत हेल्दी है और अचानक से उसके अंदर कैंसर के सेल्स आ गए. सो इट्स नथिंग, दे हैव नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड. यहाँ के जो परमाणु है वही उस रूप परिणमित हुए हैं. मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास जो बॉडी है ना, इट्स सच अ वेपन आपके अगेंस्ट. यू कैन नॉट जस्ट ट्रस्ट इट. ये जो आपको अभी अच्छा दिख रहा है, यही वाले परमाणु कल को बुरे होंगे. जैसे कि हमको नहीं होता ये पता है, इसका ट्रस्ट मत करना, ये रूप बदल लेता है, ये वाला आदमी बदल जाता है. ठीक है. तो लाइक हमें कितना डर लगता है किसी को ट्रस्ट करने में, यदि हमें पता हो कि अभी धोखा नहीं देते, अभी धोखा नहीं देते, व्हाट विल वी डू. लेकिन एक पुद्गल परमाणु तो ऐसा ही है, इसको तो हर समय बदलना है. एंड इसको बदलने के फॉर्म्स इतने सारे हैं कि वी कैन नॉट इवन वाउच ऑन वन पर्टिकुलर फॉर्म से हम अगले सेकंड प्रिडिक्ट कर लें कि ये वाला परमाणु इस रूप परिणमित होगा. वी डोंट नो, क्योंकि कॉम्बिनेशन इतने सारे हैं, पॉसिबिलिटीज इतनी सारी हैं. तो इसलिए वो जम किंच भी उत्पन्नम तस्य बना तो हवे ही नहीं है मेरे. ये नया फॉर्म जो उत्पन्न हुआ है इस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना है हमको, क्योंकि कब क्या बन जाएगा नॉट वी कैन नॉट से, हम कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में. आपने देखा होगा कई बच्चे बचपन में थोड़े गोरे नहीं होते, थोड़े सांवले होते, देयर कलर इज नॉट फेयर, वो आगे चलकर फेयर हो जाते हैं. कुछ बच्चों की हाइट कम रहती है, आगे चल के अचानक से बढ़ जाती है. कुछ बच्चे बचपन में बहुत तेज बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं जल्दी से, राइट. एंड हमको पहले से हम प्रिडिक्शंस कर लेते हैं कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है. अब कोई बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होगा, बट बड़े होकर आपको लगता है ये तो कुछ हो ही नहीं, इसको तो हमने कुछ और देखा था, राइट. बिकॉज इनमें किसी भी चीज का भरोसा नहीं है. वी कंक्लूड टू अर्ली, हम बहुत जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है. तो हम इसके नाम एक बार देख लेते हैं. पांच जो पहले आठ स्पर्श के नाम मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले हल्का भारी, मतलब लाइट एंड हैवी. ठीक है. देन कड़ा एंड नरम, सॉफ्ट एंड हार्ड. ठीक है. ये सब पुद्गल की पर्याय हैं. हल्का भारी मतलब लाइट एंड हैवी, कड़ा नरम, हार्ड एंड सॉफ्ट. ओके. कड़ा इज हार्ड एंड नरम इज सॉफ्ट. एंड देन ठंडा गरम, कोल्ड एंड हॉट. ये सब भी टच से आपको पता पड़ता है, इज इट कोल्ड और हार्ड, इट इज कोल्ड और हॉट. आप टच करोगे तो आपको पता पड़ेगा. तो स्पर्श गुण की पर्याय है. एंड इज इट चिकने चिकना होता है या फिर खुरदुरा. सो इज इट रफ और इज इट स्मूथ. तो रफ है कि स्मूथ है. तो ये आठ लक्षण होते हैं टच के. ठीक है. या तो रफ होगा या स्मूथ होगा, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, या तो टफ होगा, कड़ा होगा या नरम होगा, और या तो हैवी होगा या लाइट होगा. ठीक है. तो ये आठ गुण है और इसमें से हमेशा चार गुणों की पर्याय रहे, चार इसमें से हमेशा कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं. तो आप कोई भी चीज को लोगे तो यू जज इट ऑन द फोर पैरामीटर्स व्हेन यू आर टचिंग इट. इज इट स्मूथ और नॉट, इज इट हैवी और नॉट, इज इट कोल्ड और हॉट, एंड इज इट स्मूथ और रफ. ठीक है. ये चार पैरामीटर है, तो आठ में से सिर्फ चार होंगी, इनके जुगल है. या तो स्मूथ होगा या फिर रफ होगा, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, एक साथ ठंडा गर्म नहीं होगा. ठीक है. बट जब वो ठंडा है उसी समय उसमें गर्म होने की ताकत है, तो अचानक से वो कल को गर्म हो जाए तो घबराना नहीं, कहीं से आई नहीं है गर्मी, उसके पास थी वो स्पर्श में ताकत, राइट. ठीक है. ये आठ स्पर्श के गुण हो गए. आप लोगों ने कभी पढ़ी है पुद्गल? ये तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना आठ गुण, ये स्कंधों के पढ़ रहे हैं. पुद्गल के स्कंधों की छह और बातें बताई हैं. वो पंचाप्ती काय में आते हैं, छह प्रकार के पुद्गल होते हैं. आपने पढ़ा है सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल. ये स्कंध की विशिष्ट छह पर्याय हैं. इतनी ही पर्याय पाई जाती है पुद्गल की. कभी सुना आपने इनके बारे में? मेबी इन द नेक्स्ट क्लास हम इन द नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे हमको धूप आ रही है तो धूप आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है. आप उसको महसूस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो. तो कर रहे हो, आपको दिख रही है, मतलब ये स्कंद ही पुद्गल है, धूप पुद्गल द्रव्य है, ठीक है. बट आप इसको पकड़ नहीं सकते. देखो धूप को देख रहे हो लेकिन पकड़ नहीं सकते, राइट? सो इज इट स्थूल और इज इट सूक्ष्म? ये एट द टाइम स्थूल भी है क्योंकि दिख रही है, एंड एट द सेम टाइम इट इज सूक्ष्म क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं सकते. करेक्ट? ठीक है. सिमिलरली आपको खुशबू आ रही है किसी चीज की, तो अब आप इसको पकड़ सकते हो, खुशबू को यू कैन फील, ठीक है, बट आप उसको देख नहीं सकते, राइट? तो ऐसे ऐसे अलग अलग उसमें भेद बनते हैं पुद्गलों के, और उसके छह स्कंदों के भेद बनते हैं. वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. प्रवचन सारिजी में भी आता है और पंचास्तिकाय जी में भी आता है, हम उसकी एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है. और कंक्लूजन जो आज हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि बहिरात्मपना है वो बुरा है, उसको छोड़ना है, अंतरात्मपने को ग्रहण करना है. लेकिन ग्रहण ऐसे नहीं होगा, वो परमात्मपने को निरंतर ध्यान से अंतरात्मपना होगा. अंतरात्मा ज्ञानी अपने आप को परमात्मा देखते हैं, अंतरात्मा नहीं देखते, ठीक है. जम किंच भी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेहि नियमेन. जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश होता है, ये बाहर के जगत का सत्य है. और इसलिए आधा ही में शरणम, मेरे लिए आत्मा ही शरण है. तो मैं आत्मा को कैसे प्राप्त करूं? यही जो पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जो कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, वारम वारम सरेय अपानम, बार बार आत्मा का स्मरण करो, बार बार. हमें जब भी याद आए, जैसे भी याद आए, ये मत सोचो कि हम अभी सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, हम पवित्र अवस्था में कि अपवित्र अवस्था में. वेयर एवर यू कैन रिमेम्बर योर सोल, प्लीज डू इट. इसका अभ्यास हम बढ़ाएंगे तो हम एक दिन आत्मा में ही लीन हो जाएंगे, ठीक है. ये हमको करना है, ठीक है. और अब हम इसके पुद्गल का थोड़ी और चर्चा, पंचास्तिका में बहुत अच्छी चर्चा आई है इसके पुद्गल की, तो हम वो वाली नेक्स्ट क्लास में लेंगे. तो हमको इसका स्वरूप पता पड़ेगा और फिर हम लोग धर्म धर्म द्रव्य की आगे बात करेंगे, ठीक है. किसी को कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताइए. चलिए ठीक है, तो जिन वाणी स्तुति करते हैं आज, रिजुल आप जिन वाणी स्तुति कराइए.
अगले संडे क्लास होगी वो?
मतलब
किम क्या बात, टेम्पा में प्रोग्राम छे ने?
ना ना, नेक्स्ट संडे ना थी.
अच्छा,
ओए ना पछी ना.
पर आ क्लास को भी कैसे
आप?
आई डोंट नो मानस, आप लोग जा रहे हैं टेम्पा के?
नहीं
नहीं ना. हाँ, तो वी कैन हैव अ क्लास.
ओके, दैट्स गुड.
सुबह का प्रोग्राम कैंसिल है, परंतु ये छेड़ाला का वी कैन हैव.
ओके
ओके ठीक है. ओके रिजुल, आप हो वहाँ पर? रिजुल
जावानी के
ज्ञान
थैंक यू अनुभव जी. जय जिनेन्द्र.
थैंक यू.
थैंक यू. और ये तीन जो आपने मंत्र दिए हमारे लिए, रियली नाइस. थैंक यू.
थैंक यू. जय जिनेन्द्र.
थैंक यू.